एक बात ख़ास तौर पे जहन में रहे कि आज तो मंगल है, अवकात बदले हैं, हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोग कम भी हो गए हों, वरना पिछले हफ़्तों में लोग ज़्यादा हुआ करते थे, आज किसी वजह से बहुत कम लोग हो गए। यानी पिछले हफ़्तों के मुकाबले में, वैसे तो कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पिछले हफ़्तों के मुकाबले में आज लोग कम हैं। तो बहरहाल जुमेरात को बज़ाहिर हम, वैसे तो हमारा दोपहर का जो प्रोग्राम है वो तो नहीं हो सकेगा, लेकिन हो सकता है कि दुरूद शरीफ और दुआ वाला वो भी निज़ाम ना हो सके, इसलिए कि उसी दिन सफ़र है, तो आखिरी वक्त पे हो सकता है कि मुश्किल हो तो ना हो सके, फिर भी इंशाल्लाह हो सका तो कर लेंगे, और वरना फिर रिमाइंडर डाल देंगे कि आज नहीं होगा, लोग इंतज़ार ना करें। और फिर आगे का देख लेंगे इंशाल्लाह, मंगल को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मंगल को रख ही लेंगे, ताकि रमज़ान के सिलसिले में जो भी वजाहत करनी है वो भी बता दें कि रमज़ान में क्या तरतीब होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस वक्त तक रमज़ान की तरतीब भी, निज़ाम भी इंशाल्लाह बना लेंगे। रमज़ान में तो हमारा तफसीर वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम इंशाल्लाह चलते रहेंगे, तो रमज़ान की तरतीब की वजह से हमारा ये तफसीर और हदीस का प्रोग्राम जो हर साल रमज़ान में हम वक़ूफ़ कर देते हैं, तो वो उसी तरह होगा, लेकिन रमज़ान में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, वो सिलसिला जारी रहेगा। अवकात बदल जाएंगे तो उसकी तरतीब इंशाल्लाह आइंदा मंगल को इंशाल्लाह उसका ऐलान कर देंगे। सवाल ये है कि किसी के बारे में ये सोचना कि इसकी नज़र बद लगी होगी, क्या बदगुमानी है? उसके बारे में बुरा ना सोचा जाए, इसलिए कि किसी की नज़र लग जाना, कभी तो माँ की नज़र बच्चे पर लग जाती है, तो ये नहीं कि वो माँ बच्चे के बारे में बुरा चाहती है, बस ये कि उसने माशाल्लाह नहीं कहा या इस तरह की कोई चीज़ कभी हो जाती है, तो किसी के बारे में समझना कि उसकी नज़र लगी होगी ये बदगुमानी नहीं है, लेकिन बस ये कि साथ साथ ये भी जहन में रहे कि उसके बारे में बुरा ख्याल जहन में ना लाया जाए। हाँ, शायद नज़र लग गई होगी मोहब्बत में उसने, या ताल्लुक़ की वजह से उसने अच्छा समझ लिया होगा और नज़र लग गई होगी, तो ये हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बुरा ख्याल ना किया जाए। दूसरा सवाल यह कि अहले किताब से निकाह करने का क्या हुक्म है, उनकी किताब बदल चुकी है। अहले किताब की किताब तौरात और इंजील तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बदल चुकी थी, उसके बावजूद उनसे निकाह करने की इजाज़त का जो हुक्म आया है, तो इसका मतलब यह है कि इसी तरह तौरात और इंजील जिस हालत में तहरीफ किए हुए हैं, जो बदल चुके हैं, उस बदले हुए को भी अगर कोई मान लेता है, तब भी उसका वही हुक्म है कि वह अहले किताब के हुक्म में होगा। लेकिन मान लें कोई शख्स अपने आप को मसलन मुसलमान कहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि कुरान में हुक्म क्या है, तौहीद का हुक्म, रिसालत का हुक्म, आखिरत का हुक्म उसको पता ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो ज़ाहिर है इसका मतलब यह है कि वो मुसलमान ही नहीं है। और मसलन मुसलमान का ज़बीहा हम कहते हैं कि हलाल है, गैर मुस्लिम का नहीं। अगर एक शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, उसको ये नहीं पता कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ने का हुक्म है, ये नहीं पता कि अच्छा ज़बह करने के लिए ये शरायत हैं, ये रगे कटना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है हम उसको कहेंगे कि ये ठीक है, अपने आप को चाहे मुसलमान कहता है, लेकिन इसका ज़बीहा मोतबर नहीं है, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि इस बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है। तो यही बात होगी कि अहले किताब जो हकीकी मानों में अहले किताब हैं, अपने आप को सिर्फ ख़ानदानी क्रिश्चियन कहने वाले अहले किताब के हुक्म में नहीं है, जो वाकयातन जानते हों कि अच्छा उनकी किताब के बुनियादी अकायद क्या हैं और वो किताब को मानते हों, तो शर्त है कि अहले किताब हों। अहले किताब भी हों तो फिर उनसे निकाह भी जायज़ होने न होने के सिलसिले में ये उसूल जहन में रहना चाहिए कि इस्लामी मुल्क में जहाँ इस्लामी माहौल हो वहाँ पर उनसे निकाह करना जायज़ है, लेकिन न करना बेहतर है। जहाँ इस्लामी माहौल हो, और जहाँ गैर इस्लामी मुल्क है या गैर इस्लामी माहौल है, जैसे आजकल तो इस्लामी मुल्कों में भी यही हो गया कि वहाँ इस्लामी माहौल ही बच्चों को मुश्किल से मिलता है, स्कूलों के माहौल इतने ख़राब हैं इस्लामी मुल्कों में भी, तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर किताबिया से निकाह करना जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आगे उन जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तरबियत क्या होगी, बच्चों का इस्लाम महफूज होगा या नहीं। जहाँ पर मियाँ बीवी दोनों मुसलमान होते हैं, माँ बाप दोनों मुसलमान होते हैं, बल्कि अच्छे दीनी घराना سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دینداری گھر میں ہوتی ہے، اس کے باوجود بچوں کو اسلام پر قائم رکھنا اور دیندار رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر بیوی مسلمان ہی نہیں ہے، کتابیہ ہے، اہل کتاب میں سے ہے، اگر واقعی معنی میں واقعی حقیقی معنی میں اہل کتاب میں سے، تب بھی بچوں کا تو اسلام خطرے میں ہی رہا، بچوں کا تو ایمان خطرے میں ہی رہے گا، اور اکثر ایسا ہوگا کہ وہ بچے مسلمان نہیں ہوں گے، عام طور پر ایسا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے گناہ باپ پر آئے گا۔ تو ان حالات کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں کے لحاظ سے تو کم از کم جائز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر دینی ماحول سب کچھ بالکل دینداری ہو اور یہ پتہ ہے کہ اچھا کتابیہ سے نکاح کرنے کے باوجود بچوں کو مکمل طور پر اسلامی اور دینی ماحول ملنے والا ہے اور نیک صالح بنانا ان کو مشکل نہیں ہوگا ظاہر اسباب کے اعتبار سے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ ہاں جائز ہے، لیکن پھر بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں صحابہ وغیرہ کے اقوال سے مل سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، رجسٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر فرشتے کیوں لکھتے ہیں اعمال کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک اتمام حجت کے لیے، حجت کامل کرنے کے لیے کئی قسم کے گواہ بنائے، بلکہ بعض انسان تو قیامت کے روز یہاں تک کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ جو گواہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ کی بات کو تو ہم کیا اعتبار نہیں کرتے، والعیاذ باللہ کہنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن بعض وہ ہوں گے جو کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے تو نہیں کیا، آپ ثابت کریں کہ ہم نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ فرشتے کہ نہیں نہیں یہ تو آپ کے آدمی ہیں، یہ تو آپ کے آدمی ہیں، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، تو فرشتوں نے لکھا ہے، آپ کے لوگوں نے لکھا ہے، ہمارا کوئی چاہیے، لوگ یہاں تک کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، نختم علی افواہیم، منہ پر مہر لگ جائے گی، اب منہ نہیں بول سکتا، وہ تکلمنا ایدیہم، اب ہاتھ پیر گواہی دیں گے، تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پیر اور اعضا گواہی دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ظلم ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، ہمارے خلاف فیصلہ کیا، اپنے ہی لوگوں کو گواہ میں پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گواہوں کا نظام قائم کیا ہے، لکھنے کا نظام قائم کیا ہے، تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا الحمدللہ سلسلہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، کتاب اللہ کے ساتھ یہ تعلق کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔